ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। सो टुडे वी आर रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 एंटाइटल्ड प्रिस्क्राइब ड्यूटीज फॉर मैनकाइंड।
आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद से पाठ करेंगे जिसका नाम है मनुष्य के लिए विहित कार्य।
चैप्टर 19 एंटाइटल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द पुंसवन रिचुअलिस्टिक सेरेमनी।
अध्याय 19 पुंसवन व्रत का अनुष्ठान।
टेक्स्ट नंबर 4
श्लोक संख्या 4।
अलंते निरपेक्षाय
अलंते निरपेक्षाय
पूर्णकामो नमोस्तुते
पूर्णकामा नमोस्तुते
महाविभूतिपतये
नमः सकल सिद्धये।
अलंते निरपेक्षाय पूर्णकामा नमस्तुते
महाविभूतिपतये
नमः सकल सिद्धये।
अलंते निरपेक्षाय
पूर्णकामा नमोस्तुते महाविभूतिपतये
नमः सकल सिद्धये।
वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग्स। अलम एनाफ ते टू यू निरपेक्षाय Indifferent, Purnakama, O Lord, whose desire is always fulfilled, Namaha, obeisances, Astu, may there be, Te, unto you, Mahavibhuti, of Lakshmi, Pataye, unto the husband, Namaha, obeisances, Sakala Siddhaye, unto the master of all mystic perfections. Translation. She should then pray to the Lord as follows. My dear Lord, you are full in all opulences, but I do not beg you for opulence. I simply offer my respectful obeisances unto you. You are the husband and master of Lakshmi Devi, the goddess of fortune, who has all opulences. Therefore, you are the master of all mystic yoga. I simply offer my obeisances unto you.
अनुवाद। तब वह भगवान इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे भगवान, आप समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, किंतु मुझे ऐश्वर्य की कामना नहीं। मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ। आप इन संपत्ति की देवी लक्ष्मी देवी के पति हैं, जो समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। आप समस्त योग के स्वामी हैं। मैं आपको केवल नमस्कार करती हूँ।
Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A devotee knows how to appreciate the Supreme Personality of Godhead. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. The personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the complete whole is also complete in itself, because he is the complete whole. Even though so many complete units emanate from him, he remains the complete balance. Therefore, to take shelter of Supreme Lord is required. Whatever a devotee needs will be supplied by the complete Supreme Personality of Godhead. Tesham Nityabhiyuktanam Yoga Kshemam Vahamyaham. Therefore, a pure devotee will not ask anything from the Lord. He simply offers the Lord his respectful obeisances, and the Lord is prepared to accept whatever the devotee can secure to worship him. Even patram pushpam phalam toyam, a leaf, flower, fruit or water. There is no need to artificially exert oneself. It is better to be plain and simple and with respectful obeisances offer to the Lord whatever one can secure. The Lord is completely able to bless the devotee with all opulences.
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की भक्त जानता है कि भगवान की प्रशंसा किस तरह किस प्रकार की जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री भगवान परम पूर्ण हैं, अतः उनके समस्त उद्गम या उनका व्यवहार जगत अखंड पूर्ण से युक्त है। जो कुछ पूर्ण से उत्पन्न होता है वह भी स्वयं में पूर्ण होता है। चूँकि भगवान परम पूर्ण है इसलिए उनसे अनेक पूर्ण इकाइयाँ उद्गत होने पर भी वे पूर्ण रह जाते हैं। इसलिए परमेश्वर के शरण में जाने की आवश्यकता होता है। भक्त की जो भी आवश्यकताएं होती हैं पूर्ण श्री भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्तायाम अभियुक्तानाम योगक्षेम महाम्यहम। इसलिए शुद्ध भक्त भगवान से किसी वस्तु की याचना नहीं करता, वह केवल उन्हें नमस्कार करता है। और भक्त द्वारा जो भी अर्पित किया जाता है भले ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम ही क्यों न हो, भगवान उसे स्वीकार करते हैं। किसी बनावटीपन का कोई आवश्यकता नहीं रहती। उत्तम यही होता है कि सीधे साधे ढंग से जो भी प्राप्त हो सके उसे भगवान को नमस्कार पूर्वक अर्पित किया जाए। भगवान अपने भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने में पूर्ण सक्षम है।
हरे कृष्णा। सो आई हर्ड हियर एट पंजाबी बार वेरी गुड हिंदी क्लासेस आर गिवन, दे आर वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड।
मैंने यहाँ पे सुना कि पंजाबी बार में जो हिंदी क्लासेस हैं बहुत अच्छी दी जाती है, पूरे विश्व भर में यह मशहूर है।
एंड ऑल्दो आई वॉज बॉर्न हेयर इन डेली बट आई वॉज फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स आई वॉज इन द वेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया सो माई हिंदी हैज़ बिकम कंटेमिनेटेड।
मैं चूँकि भारतवर्ष में ही जन्म मेरा हुआ है लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया में पिछले 8 वर्षों से हूँ, तो मेरी हिंदी जो थोड़ी दूषित हो गई है।
ऑल्दो आई कैन स्पीक इन हिंदी बट won't be in very good flow.
तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ लेकिन अच्छी पूरा फ्लो में नहीं बोल सकता।
So I thought better not to waste time of Vaishnavas and speak in somewhat decent flow in English.
तो मैं यहाँ पे सोचा कि वैष्णवों का समय बर्बाद ना करूँ और इंग्लिश में ही धारा प्रवाह बोलने का प्रयास करूँ।
So here we are discussing Srimad Bhagavatam.
हम यहाँ पे श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर रहे हैं।
और श्रीमद् एंड इन दिस श्रीमद् भागवतम वी सी योगा हैज बीन डिस्कस्ड वेरी ब्रॉडली।
तो श्रीमद् भागवतम हम देखते हैं कि योग का बहुत विस्तार से चर्चा किया गया है।
बट एज वी अंडरस्टैंड इन आर गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी,
तो जैसे हम गौड़िया वैष्णव सिद्धांत से समझते हैं,
वी हैव डिफरेंट अंगज ऑफ भक्ति,
तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं।
सो द रियल योगा इज परफॉर्म्ड व्हेन वी फॉलो दीज डिफरेंट अंगज ऑफ भक्ति।
तो असली योग तभी होता है जब भक्ति के सारे अंगों का पालन करते हैं।
इन भगवद गीता कृष्णा सेज दैट हु इज द रियल योगी।
तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि असली योगी कौन है।
योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सो इन दिस वर्स वी सी दैट द रियल स्टैंडर्ड ऑफ योगा इज गिवन।
तो इस श्लोक में हम समझते हैं कि जो असली योग है उसके बारे में बताया गया है.
So many other types of yogas are there, but they are very dry.
तो बहुत तरह के योग हैं लेकिन सारे वो सूखे हैं.
But this bhakti yoga is very nectarian, juicy.
तो जो भक्ति योग है वो अमृत के समान है.
For example, just few minutes back we saw, we participated in this nice kirtan led by His Grace Ravi Lochan Prabhu.
तो उदाहरण के लिए थोड़ी देर पहले हमने कीर्तन में भाग लिया जो कि रविलोचन प्रभु जी के द्वारा किया जा रहा था.
And I was watching all the devotees dancing in the, they were like immersed in the nectar of bhakti.
तो मैं देख रहा था कि जितने भक्त लोग हैं वो कितनी अच्छी तरह से नृत्य कर रहे हैं और वो डूब गए थे भक्ति में.
So who would like to go to Himalayas or forest and just meditate for years?
तो कौन हिमालय में जाना चाहेगा और सालों साल ध्यान लगाएगा वहाँ पे?
So that's it, that is very dry.
तो बहुत ही सूखा है.
So here we see this nectarian bhakti in Srimad Bhagavatam.
तो श्रीमद् भागवतम में अमृत में भक्ति को देखते हैं.
Reciting and hearing Srimad Bhagavatam is one of the main angas or limbs of bhakti.
तो भक्ति के जो प्रमुख अंग है उसमें सबसे प्रमुख अंग है भागवतम का श्रवण और कीर्तन करना.
It is a part of पंचांग भक्ति as well.
तो पंचांग भक्ति का भी एक हिस्सा है.
जय श्री श्री राधा राधिका रमण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कृष्ण बलराम की जय. So now we have to understand what is the importance of hearing Srimad Bhagavatam.
तो हमें यह समझना पड़ेगा कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने के क्या लाभ हैं.
So all of you have assembled here on this Sunday morning at 8 o'clock.
तो आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं रविवार के दिन में 8 बजे सुबह.
You would have been somewhere else.
तो आप कहीं और भी हो सकते थे.
So many of your friends and relatives would say, why are you going to temple so early in the morning and that too on Sunday?
तो आपके रिश्तेदार और बहुत भाई बंधु और जो दोस्त लोग हैं वो ऐसा कह सकते हैं कि आप सुबह सुबह रविवार के दिन में मंदिर क्यों जा रहे हो?
And sometimes we also think that is it worth it to take to make this endeavor?
तो कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि क्या ये बिल्कुल सही है कि हम मतलब इस तरह से जा रहे हैं मंदिर सुबह?
But yes, on the strength of this proof from the scriptures.
तो जो हमारे शास्त्र है उसमें जो प्रमाण दिए गए हैं उसके आधार पे हमें बल मिलता है.
So शास्त्र in the shastras we see different shlokas.
तो शास्त्र में जो है बहुत सारे श्लोक बताए गए हैं.
And one verse, the second verse of Srimad Bhagavatam, first canto, it says.
तो जो श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक है उसमें यह बताया गया है.
The real standard of bhakti is given and the cheating religion is rejected.
जो असली धर्म है उसमें जो कैटव धर्म है उसको हटाया गया है.
धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरानाम सताम. And in that we see that Srimad Bhagavatam is compiled by Mahamuni.
तो उसमें हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है वो रचना की गई है महामुनि के द्वारा.
महामुनि इज व्यासदेव.
वह महामुनि श्रील व्यासदेव है.
श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परयत ईश्वर. सो इन दैट श्लोक इट्स गिवन दैट श्रीमद् भागवतम इज क्रिएटेड बाय महामुनि व्यासदेव.
तो श्लोक में ऐसा बताया गया कि श्रीमद् भागवतम की रचना श्रील व्यासदेव जी के द्वारा रची गई है.
And what is the need of any other scripture?
तो बाकी दूसरे शास्त्रों की क्या आवश्यकता है?
So in Srimad Bhagavatam, if we base our lives on Srimad Bhagavatam,
तो अगर हम अपना जीवन का आधार श्रीमद् भागवतम बनाते हैं,
then we will be successful.
तब हम सफल होंगे.
Even in Gita Mahatmya we hear.
तो गीता महात्म्य है उसमें भी हमें सुनने को मिलता है.
गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरी यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता. इट सेज दैट व्हाट इज द नीड ऑफ एनी अदर स्क्रिप्चर देन भगवद गीता.
तो इसमें भी ऐसा बताया गया कि भगवत गीता के अलावा और अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है.
So the real meaning is that we don't need anything else except from Bhagavad Gita, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita and all these important scriptures.
तो इसका अर्थ यह है कि हम श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत के अलावा और भी हमें कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है.
We will get everything from these scriptures.
और इन शास्त्रों में हमें सब कुछ पाएंगे.
Everything required to attain the highest success.
और जो भी सिद्धि के लिए हमें आवश्यकता है वो सब कुछ इन शास्त्रों में पाया जाता है.
So here today we have begun the last chapter of sixth canto.
आज यहाँ पे छठे स्कंध के जो अंतिम अध्याय है वहाँ हमने शुरू किया आज.
So we read the fourth verse which is on the board here.
और जो बोर्ड पे जो श्लोक लिखा गया है वो चौथा श्लोक है.
So we will quickly read verses 1-3 as well.
तो बहुत ही जल्दी हम पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक भी पढ़ेंगे.
I think Prabhu can just read Hindi. That would be fine.
तो पहले श्लोक का अनुवाद इस तरह से है. महाराज परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, आप पुंसवन व्रत के संबंध में पहले ही बता चुके हैं. अब मैं इसके विषय में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस व्रत को रखकर भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है. दूसरे और तीसरे श्लोक का अनुवाद इस तरह है. सुखदेव गोस्वामी ने कहा, स्त्री को चाहिए कि अगहन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अपने पति की आज्ञा से इस नैमित्तिक भक्ति को तप के व्रत सहित प्रारंभ करें, क्योंकि इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं. भगवान विष्णु की उपासना करने के पूर्व स्त्री को चाहिए कि वह मर्दों के जन्म की कथा को सुने. ब्राह्मणों की आज्ञा से वह प्रातःकाल अपने दांत साफ करें, नहावें, श्वेत साड़ी पहने और अलंकार धारण करें, और फिर कलेवा करने के पूर्व भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करें.
So in last chapter, chapter number 18, we saw that Diti performed Pumsavana sacrifice to get a son to kill Indra.
तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि दिति ने पुंसवन व्रत का पालन किया ताकि वह ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिससे इंद्र की हत्या हो.
And in this chapter, chapter number 19, we see the details of Pumsavana sacrifice.
और इस अध्याय जो कि अध्याय संख्या 19 है, उसमें हम विस्तार से जानते हैं कि पुंसवन व्रत में होता क्या है.
So here, verse number 4, today's verse we saw, it starts with she should then pray to the Lord as follows.
तो इस चतुर्थ श्लोक में हम देखते हैं कि जो शुरुआत होती है वैसे होती है, तब वह भगवान के इस प्रकार से प्रार्थना करे.
So it is an instruction or it is a process which is followed by Diti, a woman.
तो यह जो एक तरह से निर्देश और एक तरीके से दीति ने जो और किसी स्त्री जो पुंसवन व्रत की शुरुआत करती है.
So does that mean that these verses are only for Matajis?
इसका यह मतलब है कि यह जो श्लोक है सिर्फ माताओं के लिए है, माताजी के लिए है?
But no, it's not like that. If we see this verse, Alam te nirapekshaya purnakam namostute, it's a very beautiful verse.
लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ उनके लिए है, यह बहुत ही सुंदर श्लोक है.
In this verse, we see it's given that what is the internal mood of a devotee.
तो इसमें यह बताया गया कि किसी भक्त का जो आंतरिक भाव है वो कैसा होना चाहिए.
So there are two things. One is external, all the external requirements and the internal mood.
तो दो चीजें होती है, जो बाह्य चीज होती है, बाह्य चीजों, और दूसरा होता है कि आंतरिक भाव.
So what are the external requirements?
तो बाह्य चीजें क्या क्या जरूरत पड़ती है?
So you know, we wear dhoti, we wear tilak, kanthi mala, sari.
हम धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं.
सो फ्रॉम अ डिस्टेंस इफ वी सी वी कैन से ओ दिस इज अ वैष्णवा.
तो दूर से हम देख करके कह सकते हैं कि यह वैष्णव है.
बट देन व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड.
लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा है.
सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एक्चुअली.
वह ज्यादा महत्वपूर्ण है.
बिकॉज एक्सटर्नल्स एनीवन कैन डू वेरी इजीली. जस्ट यू कैन गो टू दिस नाइस गिफ्ट शॉप, purchase these items, kanthi mala, wear tilak, shave your head.
तो बाहरी दृष्टि से भक्त बनना बहुत आसान है. या गिफ्ट शॉप में हम जाएंगे, अच्छी तरह धोती कुर्ता लेंगे, तिलक लगाएंगे, कंठी पहनेंगे.
But the real challenge is how to change our heart.
लेकिन असली जो मुश्किल है वो है कि अपने हृदय को हम कैसे परिवर्तन करें.
And that is shown in Bhagavat, in Srimad Bhagavatam.
और वह हमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया है.
So that's why it is very important to hear Srimad Bhagavatam regularly.
इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें.
So most of us have changed externally and many of us have also changed internally to great extent.
तो हम में से बहुत लोग बाह्य रूप दृष्टि से अपने आप को बदल लिया और बहुतों ने आंतरिक रूप से भी अपने आप को बदला है.
But all of us want to change fully from within.
लेकिन हमें सबको चाहिए कि आंतरिक रूप से हम अपने आप को बदलाव करें, परिवर्तन करें.
And how will that happen?
और वह कैसे होगा?
So here we can see in today's verse.
और यह हम आज के श्लोक में हम देख सकते हैं.
अलम ते निरपेक्षाय पूर्ण काम नमोस्तुते. So here the definition of पूर्ण काम is given.
यहाँ पे जो पूर्ण काम की परिभाषा दी गई है.
O Lord whose desire is always fulfilled.
जिसकी कामना सदैव पूर्ण हुई रहती है, ऐसे भगवान.
So who here can say that all of their desires can be fulfilled? Please, you can raise hands.
Who can? आप ऐसे वो भक्त हाथ खड़ा कर सकते हैं जो कह सकते हैं कि उनकी इच्छाएं सारी पूर्ण होती हैं.
I think you are very Krishna conscious. That's why.
माता जी बहुत कृष्ण भावना भावित है, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण
होती हैं. So we have two special Matajis here. Their all desires are always fulfilled.
So माताएं हैं जिनका सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं.
But what I was speaking was on material level, it's not possible.
भौतिक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि यह संभव नहीं है.
So people have so many desires.
क्योंकि लोगों के बहुत सारी इच्छाएं होती हैं.
Some are fulfilled, some are not.
कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं.
And the desires which are not fulfilled leave us frustrated.
और जो इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होती हैं, उसके कारण हम हतोत्साहित हो जाते हैं.
So what is the technique so that all our desires will be fulfilled?
तो वह क्या तरीका है जिसके द्वारा हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं?
One is of course associate with devotees like these Matajis.
एक तरीका यह है कि हम भक्तों के संग में रहें, जिस तरह की माताजी संग करती हैं भक्तों का.
And of course take instruction from Srimad Bhagavatam.
और श्रीमद् भागवतम के आदेशों का पालन करें.
So here in this verse, Krishna is referred to as Purna Kama.
यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण काम बताया गया है.
So if we dovetail our desires, purify our desires in line with Krishna's desires.
अगर हम सारी अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा के साथ लगाते हैं,
then all our desires will be fulfilled.
तब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी.
Because no one can stop Krishna to fulfill his desires.
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं रोक सकता उनकी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए.
And if we are a part of his plan, then our desires will be fulfilled.
अगर हम उनकी योजना के हिस्से हैं तो हमारी इच्छाएं भी सारी पूर्ण होंगी.
And that's what Krishna instructs in Bhagavad Gita also.
तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं.
In chapter 11, universal form.
और जो 11वां अध्याय है विराट रूप.
तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुंक्षन् राज्यं समृद्धं मयैव एते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्य साचीन. So in this verse we see that Krishna instructs Arjun to become his instrument.
तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आप जो है मात्र निमित्त बनिए.
But we see in this material world that people act in an opposite way.
लेकिन इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो उल्टे तरीके से कार्य करते हैं.
People want everyone and even God to become their instrument.
और जो लोग चाहते हैं कि बाकी जितने लोग हैं, यहाँ तक कि भगवान भी उनके निमित्त मात्र बने.
They want to use everyone.
वो सभी का प्रयोग करना चाहते हैं.
They want to use their family members, their husband.
वो अपने परिवार वालों का प्रयोग करना चाहते हैं.
देयर हस्बैंड, देयर वाइफ्स,
अपने पति का, अपनी पत्नी का.
देयर चिल्ड्रन,
अपने बच्चों का.
एंड इवन डेमी गॉड्स,
और यहाँ तक कि देवी देवताओं का भी.
वी सी दीज लॉन्ग क्यूज in front of these temples of demigods.
हम देखते हैं कि जो देवी देवताओं के मंदिर होते हैं उसके बाहर बहुत लंबी लंबी लाइन होती है.
So do these people really have respect for these demigods?
तो क्या आपको लगता है कि इन लोगों का जो देवी देवताओं के प्रति सम्मान है?
No, most of them don't. 99.9% don't have real respect from heart for these demigods.
So 99.9% लोगों का जो है ऐसा सम्मान की भावना नहीं होती है.
They want to use demigods as their instrument.
वो जो देवी देवता हो उनको अपना अस्त्र निमित्त बनाना चाहते हैं.
They want their desires to be fulfilled. That's why they go to these demigods.
क्योंकि उनके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है इसलिए वह जाते हैं देवी देवताओं के पास.
कामस्तर हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता. And once their desires are fulfilled, they don't care for the demigods.
एक बार उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर वो परवाह नहीं करते हैं देवी देवताओं का.
So that's why we have to flip their consciousness, their motives. We have to turn it upside down.
तो उनकी जो चेतना है उसके हमें बदलना होगा.
So everyone wants to satisfy their own senses.
तो सभी चाहते हैं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति करें.
But actually they are not able to satisfy their senses.
लेकिन वो अपने इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर पाते.
That's why we can see so many frustrated people in the society.
इसलिए हम समाज में देखते हैं कि इतने सारे लोग हतोत्साहित घूमते रहते हैं.
Crime is increasing.
और जो अपराध है वो बढ़ती जा रही है.
So as material this tendency to gratify senses, material senses, as this tendency is increasing, frustration, crime, dissatisfaction, all these things are also increasing.
तो भौतिक प्रवृत्ति जो भोगने की अगर वो बढ़ती जा रही है तो इसके अनुरूप जो है वो अपराध भी बढ़ता जा रहा है.
So we have these great scriptures, and one of the great scripture is श्री बृहद भागवतामृत.
तो हमारे बहुत सारे शास्त्र हैं और इनमें से एक महान शास्त्र है श्री बृहद भागवतामृत.
एंड दैट इज लाइक द एसेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम.
और जो श्रीमद् भागवतम का सार है वह शास्त्र.
इन दैट परीक्षित महाराज इज एक्सप्लेनिंग द एसेंस टू हिज मदर उत्तरा.
तो उसमें परीक्षित महाराज अपनी माता उत्तरा को बताते हैं.
So in that there is, as most of us know, the story of Gopa Kumar is given.
तो वहाँ पे आप में से बहुत लोगों को पता होगा जो गोप कुमार है उनकी कहानी है.
So Gopa Kumar wants to go to the best place and get the best pleasure.
और गोप कुमार जो है वो सबसे अच्छी जगह जाना चाहते थे और सबसे अच्छे सुख का आभास करना चाहते थे.
So he is on the Bhumandal, then he goes to Swarglok.
तो सर्वप्रथम वो भूमंडल में आते हैं फिर स्वर्गलोक में जाते हैं.
Then he goes to महरलोक, then तपोलोक.
फिर महरलोक में जाते हैं तपोलोक में जाते हैं.
And finally we see later then he reaches गोलोक वृंदावन.
और अंततो गत्वा वो गोलोक पहुंचते हैं.
And there he gets the real satisfaction of heart.
और उनको जो हृदय की असली संतुष्टि होती है वहां पे प्राप्त होती है.
So regarding these this point that everyone wants to satisfy their senses but they are not able to satisfy materially.
तो इस बिंदु पे कि लोग चाहते हैं कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करें लेकिन वह भौतिक रूप से उसको तुष्ट नहीं कर पाते हैं.
In story of Gopa Kumar we see when he reaches tapolok.
तो गोप कुमार की कहानी में हम सुनते हैं कि जब वो तपोलोक में पहुंचते हैं.
He meets different sages like the four Kumaras.
तो वहाँ पे बहुत सारे ऋषियों से मिलते हैं जैसे कि चार कुमार.
पिपलायन, कवि, हवेर एक्सेट्रा.
पिपलायन, कवि, हव्य इत्यादि.
सो वन ऑफ द सेजेस पिपलायन एक्सप्लेन्स टू गोप कुमार.
तो उनमें से एक ऋषि पिपलायन जो है वो गोप कुमार को ऐसा बताते हैं.
सो ही टेल्स हिम दैट एक्चुअली गोप कुमार वॉज ट्राइंग टू फाइंड द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ऑन दैट प्लैनेट.
तो गोप कुमार जो है उस मंडल पे जो ईश्वर है उनको देखना चाहते थे, खोजना चाह रहे थे.
But he couldn't find him, he couldn't see him.
लेकिन वह उनको देख नहीं पा रहे थे.
So then Pipalayan saw that he is attempting to find through, to see the Lord of the universe through his eyes.
तो पिपलायन ऋषि ने देखा कि वो लोग वो जो है वो उस ईश्वर को अपने आंखों के द्वारा देखना चाह रहे हैं.
So he instructs him that you are trying to satisfy your senses, your eyes.
तो उन्होंने ऐसा वो निर्देश देते हैं कि आप अपनी आंखों को तृप्त करना चाह रहे हो.
But senses cannot be happy if your mind is not happy.
जो इंद्रियां खुश नहीं होंगी अगर आपका मन खुश नहीं है.
So what people think is, we have body means senses. So people think we are the body. They don't have information about the soul.
तो आम विचारधारा यह है कि जो शरीर है उसका मतलब senses, उनका मतलब इंद्रियां हैं. लोगों को जो आत्मा का ज्ञान है वो पर्याप्त रूप से पता नहीं है.
So to be happy, we have to satisfy our senses.
तो जो खुशी हमें प्राप्त होगी वो तभी होगी जब हमें अपनी इंद्रियों को तुष्टि करेंगे, ऐसा मानना है लोगों का.
And each sense has its sense object.
और हर एक जो इंद्रिया है उसके एक इंद्रिय वस्तु है.
So people think that if we bring senses and sense objects closer, the senses will automatically be happy.
तो ऐसा समझते हैं कि अगर इंद्रियों को इंद्रिय वस्तुओं के साथ संयोग किया जाए तो अपने आप से हमें खुशी प्राप्त हो जाएगी.
And it sounds very logical.
और ये बहुत ही तार्किक लगता है.
But then why are they not able to be satisfied?
लेकिन फिर भी वह संतुष्ट क्यों नहीं होते?
So the sage Pipalayan explains this.
तो यह पिपलायन ऋषि जो है वो विस्तार में बताते हैं.
So he says to experience happiness, there are two main things.
तो वो कहते हैं कि जो सुख है उसका अनुभव करने के लिए वो दो चीजें होती हैं.
The mind and the soul.
मन और आत्मा.
So for example, there is a man. And there is no soul within that body.
उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति है लेकिन उसमें कोई आत्मा नहीं है.
So the body is lying there and all the senses are there.
वहाँ पे शरीर है और सारी इंद्रियां भी हैं.
And we can bring different sense objects near those senses.
और सारे इंद्रियों के सामने हम एक एक करके इंद्रिय वस्तु लाते हैं.
So will he feel happiness?
तो क्या वह उसे सुख का आभास होगा?
So this person is lying. There is no soul. He is a dead man. But all the senses are there, and you. So there is one sense, tongue, and you bring a gulab jamun near the tongue.
मरा हुआ व्यक्ति है, लेटा हुआ, उसके आगे जो हम गुलाब जामुन लाते हैं, उसके जीवा पे रखते हैं.
So what will happen? Will there be any happiness?
तो क्या वह बहुत खुशी होगा?
No.
नहीं.
So without soul, the senses cannot enjoy sense objects.
तो बिना आत्मा के जो है जो इंद्रियां हैं वो इंद्र वस्तु का सुख का आभास नहीं कर सकते.
And in the same way, if mind is not happy, senses cannot experience the joy of sense objects.
उसी तरह से अगर मन खुश नहीं है तो फिर जो इंद्रियां हैं वो इंद्रिय वस्तु का सुख का आभास नहीं कर सकते.
We were discussing few days back that, for example, a mother loses his child.
तो हम कुछ दिन पहले यह चर्चा कर रहे थे, उदाहरण के लिए कोई माता है वो अपने बच्चे उसका बच्चा मर जाता है.
So her mind is disturbed.
तो उसका जो मन है बहुत अशांत है.
And we tell her, okay, please take this feast plate from Gaur Purnima.
तो हम उनके पास फीस्ट प्लेट ले जाते हैं, गौर पूर्णिमा का महाप्रसाद ले जाते हैं.
So will she be able to enjoy that?
तो आपको क्या लगता है वो बहुत खुशी पूर्वक ग्रहण करेंगी?
No, because the mind is stressed.
क्योंकि मन जो है बहुत ही अशांत है.
So that's what sage Pipalayan is explaining here, that there is no need to find Lord with your blunt material vision.
तो पिपलायन ऋषि यही बता रहे हैं कि आप जो भगवान को अपने जो बाह्य आंख है उससे देखने का प्रयास मत कीजिए.
We have to understand what real meditation is and how to remember Lord within our mind.
तो हमें यह समझना पड़ेगा कि असली ध्यान क्या है और हमेशा हम किस प्रकार से भगवान का ध्यान कर सकते हैं.
Then we can see Krishna everywhere.
तब हम भगवान श्री कृष्ण को सभी जगह देख सकते हैं.
So this is what is missing in today's society.
और यह जो है आज के समाज में लुप्त हो गया है.
The real knowledge of soul, mind and intelligence.
जो असली ज्ञान है मन का, बुद्धि का और आत्मा का.
But as Vaishnavas we understand this.
लेकिन वैष्णवों के रूप में हमें यह पता है.
People think that actually in society these terms yoga, meditation, they have become mainstream and very popular.
तो योगा, मेडिटेशन, ध्यान लगाना ये बहुत ही आम चीजें हो गई हैं आजकल.
But what are people using these processes for?
लेकिन वो लोग जो है इन साधनों का किस लिए इस्तेमाल करते हैं?
Just for these external reasons.
बस बाह्य कारण के लिए करते हैं.
Just to become calm.
शांत बनने के लिए.
To reduce fat in the body.
अपनी वसा को कम करने के लिए.
And all these just external reasons.
बाहरी चीजों का बस करने के लिए.
But there is no understanding of soul.
लेकिन उनको कोई भी आत्मा का ज्ञान नहीं है.
And then obviously they don't have any knowledge of the super soul.
और उनको जो परमात्मा के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं है.
Of which the soul is a part.
जिसका जो आत्मा एक अंश है.
So if we don't know the super soul Krishna, who is also referred here as Sakal Siddhaye.
अगर हम भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जो कि सकल सिद्धये के नाम से जाने जाते हैं.
So Sakal Siddha means who is the master of all mystic perfections.
सकल सिद्धि का मतलब है समस्त सिद्धियों के स्वामी.
So if we don't have knowledge about such a master.
अगर हम ऐसे जो मास्टर है उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है.
So then how will we access these perfections?
तो हमें कैसे इन सिद्धियों की प्राप्ति होगी?
So people go very far, they see this, think that by meditation we will calm our mind, we will reduce our heartbeat.
तो लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे योग करके ध्यान करके हम बहुत शांत हो जाएंगे, हमारा जो हृदय गति है वो कम हो जाएगी.
And that is the perfection of life.
यह जीवन की शुद्धि है.
Then the polar bear is actually the best meditator.
तो जो भालू होते हैं, polar bears होते हैं, वो असली ध्यानी हैं.
He can reduce his heartbeat to 4 beats per minute when he sleeps, when he hibernates.
और जब वो सोता है, तो फिर एक मिनट में 4 बार उसकी धड़कन धड़कती है.
So is he the highest yogi and meditator?
क्या वो सर्वोत्कृष्ट योगी है?
No, he is just an animal interested in eating, sleeping, mating and defending.
वो मात्र एक जानवर है जो कि आहार, निद्रा और भय मैथुन करता है.
But human beings should have greater aspirations.
लेकिन जो मानव है उसको ऊंचा कुछ सोचना चाहिए.
And a real devotee, a real yogi has a plan to satisfy his senses in a real way.
तो जो असली भक्त है उसका यह योजना है कि अपनी इंद्रियों को सही तरीके से संतुष्ट करता है.
So he uses his intelligence.
वह अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है.
To plan his day and life.
तो अपनी जो जीवन का है वो योजना बनाता है.
That how he can engage all his senses in the best way.
वो किस प्रकार से अपनी सारी इंद्रियों को सही रूप से लगा सके.
So from the ears we can hear Hare Krishna, nice kirtan.
और कानों के द्वारा हम बहुत सुंदर हरे कृष्णा कीर्तन सुन सकते हैं.
From our tongue we can sing the names of Lord, we can glorify Krishna through Srimad Bhagavatam.
और जीवा से जब हरे कृष्ण महामंत्र कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, कर सकते हैं श्रीमद् भागवतम से.
And from tongue as we know also we can take nice prasad.
और जीवा से जब बहुत सुंदर प्रसाद पा सकते हैं.
And so on, all the senses can be immersed and engaged with the real sense objects.
और इस तरह से सारे इंद्रियों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान की सेवा में.
And then what happens is that we are on the topmost platform.
और इससे क्या होगा, जब जो सर्वोत्कृष्ट स्तर है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं.
सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति. So yayatma suprasidati, then our soul, our heart will be really satisfied.
उससे जो हमारा हृदय, हमारी आत्मा निश्चित रूप से संतुष्ट होगी.
So we have to be convinced that what we are doing, that we are spending our time on hearing Srimad Bhagavatam.
तो हमें बहुत ही हमारे भरोसा होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कितना श्रेयस्कर है. श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, सुबह सुबह आ रहे हैं.
And all these other devotional activities.
और इतनी सारी जो भक्ति क्रियाकलाप हम कर रहे हैं.
So it is worth to do all these activities.
ये सब करना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही श्रेयस्कर है.
Otherwise we will be bewildered like the modern society.
अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम बहुत भ्रमित हो जाएंगे आधुनिक समाज से.
So in the West we can see the limit of madness.
तो पाश्चात्य जगत में हम देख सकते हैं जो पागलपन का है वो हद पार कर चुके हैं वो लोग.
And India is following their footsteps.
और भारत वर्ष जो है उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं.
So when I come from Australia to Delhi,
जब मैं ऑस्ट्रेलिया से दिल्ली आता हूँ,
so I can see in Delhi it's pretty much the young generation is following the Western trends.
हम देख मुझे मैं देखने को मिलता है कि जो अभी का जो young generation है, जो अभी युवा पीढ़ी है, वो उसी पद चिन्हों का अनुसरण कर रही है.
I went to different markets, Connaught Place. It's pretty much like any Western market.
मैं जब बाजार जाता हूँ, Connaught Place वगैरह में जाता हूँ, तो बस पाश्चात्य जगह में जैसे markets होते हैं, वैसे ही हैं.
So the result of following footsteps of Western trends is you will get the results what they are getting also.
उसका परिणाम यह होगा कि जो वो लोग वहाँ पे परिणाम भुगत रहे हैं.
And which is very disastrous.
बहुत ही दयनीय स्थिति, बहुत ही खराब है.
The mentally related diseases, depression is increasing at a great pace in the West.
जो मानसिक बीमारियां जैसे अवसाद इत्यादि वो पाश्चात्य जगत में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है.
And that is the result of taking all these intoxicants, drugs.
और जो मद्यपान करना, ड्रग्स खाना और इस तरह से ये सब बढ़ता, इनके कारण ऐसा हो रहा है.
And people think that is happiness. You take drugs and dance.
और लोग समझते हैं कि आप ड्रग्स लेंगे, खूब डांस कीजिए, नृत्य कीजिए.
But then they suffer. I have one friend.
लेकिन वो ऐसा करने से दुखी होते हैं. प्रभु जी के एक फ्रेंड हैं, दोस्त हैं.
He used to take drugs when he was young.
और वह जो है जब युवा अवस्था में था तो वह ड्रग्स लिया करता था.
And now he's in his early 50s.
और वह जो है शुरुआती अर्धशतक में है.
And many couple of decades back, around 20 years back, he stopped taking drugs.
और 20 साल पहले जो है उसने ड्रग्स लेना बंद कर दिया था.
He knew it's not correct and I'm a good man, I want to be, these are all wrong things.
और उसे ऐसा लगा कि ये सारी बेकार चीजें हैं, तो मुझे ऐसा छोड़ देना चाहिए.
But he has left drugs, but the effect of drugs hasn't left him.
और उसने ड्रग्स को छोड़ दिया, लेकिन ड्रग्स का जो प्रभाव है उसने उसको नहीं छोड़ा.
So he has such mental problems.
और उसे इतनी मानसिक दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं.
Many times his body is very tired due to physical work, but his mind is so active he cannot sleep.
और शरीर से वो कुछ भी काम करता है तो बहुत ही जल्दी थक जाता है. मन इतना अशांत रहता है कि वो सो नहीं पाता है.
So even after many many years of leaving these intoxicants, he is still suffering.
और कई सालों के बाद भी उसने बहुत साल पहले ड्रग्स छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसे उसको सहन करना पड़ा उसके प्रभाव को.
So we don't want to follow these Western trends.
तो हमें जो ये पाश्चात्य की जो पद्धतियां हैं उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए.
Of course we think, oh yeah, we are not that bad, we won't take drugs. But yeah, tea, coffee is okay. It's harmless, you know.
तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है, हम उतने बुरे नहीं हैं कि हम ड्रग्स लेंगे, लेकिन चाय कॉफी तो पी सकते हैं.
But that's how it starts, you know. You start with little, you know, start with little, and then with bad association, it just grows.
तो शुरुआत ऐसी है, तो हम छोटे से छोटी चीजें शुरू करते हैं, लेकिन गलत संग से वो बढ़ता चला जाता है.
So that's why we have to have this conviction in the process of bhakti.
तो इसलिए हमें पूर्ण रूप से श्रद्धा होनी चाहिए भक्ति के नियमों पे.
That Prabhupada introduced these four regulative principles.
So, Prabhupada ji ne char niyamon ka jo shuruaat kiya hai.
It is based on shastra.
Wo shastron ke aadhar pe hai.
It is perfect.
Wo purn hai.
And all other instructions are also perfect.
Aur jitne nirdesh hain Srila Prabhupada ji ke wo sare ke sare purn hain.
Of course, we see the results of following these instructions.
Aur hum dekhte hain ki jo log inka palan karte hain niyamon ka.
But the real proof is that it's stated here by the authorities.
और जो असली प्रमाण है जो कि हमें अधिकृत व्यक्तियों से प्रमाण इस शास्त्रों में मिलता है.
So that's why we read and relish and recite Srimad Bhagavatam and other scriptures.
इसलिए हम श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करते हैं और उसका आस्वादन करते हैं.
श्रीमद् भागवतम is very nicely arranged.
श्रीमद् भागवतम बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है.
इट इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ कृष्णा.
और यह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का शरीर है.
द फर्स्ट टू कैंटोज आर हिज लोटस फीट.
तो प्रथम दो स्कंद जो है उनके चरण कमल के समान है.
द थर्ड एंड फोर्थ कैंटोज कैन बी सेड टू हिज थाइस.
और जो तीसरे और चौथे स्कंद है वो उनके जंघा के समान है.
The fifth canto is like his belly.
और उनका जो पांचवा स्कंद है उनके उदर के समान है.
The sixth is like his chest.
और जो छठा स्कंद है वो उनके वक्षस्थल के समान है.
Seven and eight are his arms.
और सातवां और आठवां स्कंद उनके दो भुजाएं हैं.
Ninth is his neck.
और नौवां स्कंद उनकी गर्दन है.
And the tenth is his beautiful lotus face.
और दसवां स्कंद जो उनका बहुत ही सुंदर चेहरा है.
And 11th and 12th are respectively his forehead and the crown.
और जो 11वां 12वां स्कंद है वो उनका मस्तक है और मुकुट है.
So that's how we take darshan of deities.
इस तरह से हम जो भगवान के शिव विग्रह है उनका भी दर्शन इसी तरह से करते हैं.
So when we see their lordships, श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री राधा राधिका रमन, वी लुक टुवर्ड्स देयर लोटस फीट फर्स्ट एंड देन रेज आवर विजन.
और जब हम श्री विग्रह का ऐसा दर्शन करते हैं सर्वप्रथम उनके श्री चरण कमलों के दर्शन करते हैं और धीरे धीरे अपने दृष्टि को ऊपर उठाते हैं.
सो सेम वे व्हेन वी रीड श्रीमद् भागवतम,
उसी तरह से जब हम श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं.
व्हेन वी प्रॉपरली रीड थ्रू द फर्स्ट कैंटो,
और हम प्रथम स्कंद से शुरुआत करते हैं.
And then throughout we go till the 12th canto.
और पूर्ण रूप से उस तरह से हम 12वें स्कंद तक पढ़ते हैं.
And then we can get the full benefit of the real darshan of Krishna.
और उस तरह से हम पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के.
So I would like to end with this beautiful verse from second canto.
तो दूसरे स्कंद का जो बहुत ही सुंदर एक श्लोक है उससे मैं अंत करना चाहूंगा.
So this is given in the second chapter.
और दूसरे अध्याय में दिया गया है.
एकैक शोंगानि धियानुभावयेत् पादादियावधसितं गदावृत जितं जितं स्थानमपोय धारयेत् परं परं शुद्धयति दीर्यथा यथा. So here it says the process of meditation.
तो यहाँ पे यह बताया गया है जो ध्यान करने की विधि है.
So this is the real meditation that's given here.
यह असली ध्यान योग है यहाँ बताया गया.
So in this we should begin from the lotus feet of the Lord.
और हम शुरुआत करना चाहिए हमें भगवान के दर्शन के श्री चरण कमलों से.
And progress to his smiling face.
और धीरे धीरे उनके जो जो चेहरा है उनके तरफ जाना चाहिए.
The meditation should be concentrating upon the lotus feet.
और जो ध्यान है वो केंद्रित होना चाहिए उनके चरण कमलों पे.
Then the calves.
उसके बाद उनके घुटनों पे.
Then the thighs.
उनके जंघा पे.
And in this way higher and higher.
और इस तरह से ऊपर और ऊपर.
The more and more the mind becomes fixed.
जितना ज्यादा मन उन पे केंद्रित होगा.
Upon the different parts of the limbs.
जितने अंग है भगवान के उनके ऊपर.
One after another.
एक के बाद एक.
The more the intelligence becomes purified.
उससे जो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी.
So this is the result. When we take the darshan of Krishna, when we read Srimad Bhagavatam, what happens is our intelligence becomes purified.
जब हम इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं श्रीमद् भागवतम का पाठ करते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है.
And with this purified intelligence, then we have taken care of the internals.
और जब शुद्ध बुद्धि के द्वारा जो है हम आंतरिक रूप से भी विकास कर सकते हैं भक्ति में.
एंड देन ऑफ कोर्स एक्सटर्नली वी कैन लुक लाइक अ वैष्णवा.
और बाहरी रूप से हम वैष्णव की तरह दिख सकते हैं.
एंड फ्रॉम इंटरनली आल्सो वी कैन फील दैट यस वी आर प्यूरिफाइड.
और आंतरिक रूप से हम यह समझ सकते हैं आभास कर सकते हैं कि हम शुद्धिकरण की तरफ जा रहे हैं.
And happiness can only be present in this purified stage.
और जो असली सुख है वो इसी शुद्ध अवस्था में प्राप्त होती है.
So that's the result of following this practice of bhakti yoga.
भक्ति योग के जो प्रक्रिया है उसका पालन करने का यह परिणाम है.
And if we do it with conviction in good association.
और हम पूर्ण श्रद्धा के साथ अच्छे संग में ऐसा करते हैं.
Then Krishna will bestow his mercy upon us.
तो भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा की बौछार करते हैं.
So I would like to end there and ask if you have any questions.
मैं यहाँ पे विराम देना चाहूँगा. आप में से किसी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं.
Or comments.
किसे कोई टिप्पणी है.
प्रभु जी समराइज. Do you want to summarize the question?
तो प्रभु जी का यह प्रश्न है कि अगर जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि जो उनकी भक्ति करेगा वो निश्चित रूप से उनको प्राप्त करेगा, लेकिन प्रभु जी के बहुत ही क्लोज हैं, इनके मेंटर हैं, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, अपने सारे फलों को उनको अर्पित करते हैं, तो पूछना चाह रहे हैं कि इन दोनों की भक्ति में, उन दोनों की भक्ति में क्या अंतर है? कोई श्री कृष्ण का ऐसे अहेतुकी भक्ति करता है और कोई शिव जी का अहेतुकी भक्ति करता है, तो दोनों की ऐसी भक्ति का क्या अंतर है और क्या गति है?
So that's a very good question. Thank
you. बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत धन्यवाद इसके लिए.
And this is a very common misconception also.
और ये बहुत ही सामान्य गलत धारणा है.
So in order to worship someone, we need to know their position.
तो किसी की जब हम आराधना करते हैं तो उनकी स्थिति का हमें ज्ञान होना चाहिए.
We need to have the real knowledge.
और जो असली ज्ञान है उसकी, उसे हमें पता होना चाहिए.
And knowledge is given in these books like Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam.
और ज्ञान जो है हमें श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता ही से प्राप्त होता है.
So we see like Krishna is like the prime minister.
हम देखते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण एक प्रधानमंत्री की तरह हैं.
And all the ministers can be likened to the demigods.
और जितने मंत्री हैं वो सारे देवी देवताओं के समान हैं.
So prime minister is chief, and then the cabinet of ministers assist the prime minister.
जो प्रधानमंत्री है वो मुख्य है और जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनकी वो सहायता करते हैं.
There is no competition between them.
और उनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती.
They are in the same government.
और वो एक ही सरकार में हैं.
So they cooperate with each other, but they follow the instructions of the prime minister ultimately.
वो एक दूसरे का सहयोग करते हैं लेकिन वास्तविक रूप से जो प्रधानमंत्री है उनके निर्देशों का पालन करते हैं.
So same way Lord Shiva, it is said he is a great devotee of Krishna.
उसी तरह से भगवान शिव के बारे में ऐसा बताया गया है कि वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं.
वैष्णवानाम यथा शंभु, this is given in Srimad Bhagavatam.
श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वैष्णवानाम यथा शंभु.
So now the difference between worshipping Lord Shiva and worshipping Krishna is,
और जो भगवान शिव की आराधना करना और भगवान श्री कृष्ण की आराधना के दोनों में क्या भेद है?
That one is the right way and one is a wrong inverted long way.
और एक सही तरीका है और दूसरा बहुत ही लंबा और उल्टा तरीका है.
And one who approaches, so Lord Shiva is a demigod, one who approaches out of personal material motive without respect.
तो भगवान शिव जो है एक देवता है और कोई उनको पहुंचता है गलत विचार के साथ.
So then he fulfills, he is satisfied easily, is called Ashutosh.
और उनका नाम आशुतोष है, तो उसके जो भी भौतिक इच्छा होती है वो उसको पूर्ण करते हैं.
But as in case of your friend who worships Lord Shiva with real respect and honor.
लेकिन आपके जो फ्रेंड है, आपके जो दोस्त हैं, वो भगवान शिव की आराधना करते हैं बहुत सम्मान के साथ.
So then Lord Shiva will give him intelligence and he will direct him towards Krishna.
तो भगवान शिव जो है उनको बुद्धि देंगे और भगवान श्री कृष्ण की तरफ उनको अग्रसर करेंगे.
Because he is himself worshipping Krishna, he carries beads and he worships Sankarshan, he chants.
क्योंकि भगवान शिव भी जो है वो भी भगवान के ही भक्त हैं, उनके हाथ में आप माला देखेंगे, वो माला जप करते हैं.
So only those who are sincere like your friend Lord Shiva will inspire him to go towards Krishna, and it can be through you.
और आपके माध्यम से हो सकता है कि वो आपको इंस्पायर करें, आप उनको इंस्पायर करें और वो जो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगे.
And there are many examples here, and in Srimad Bhagavatam there are prachetas who were directed towards Krishna or Vishnu.
श्रीमद् भागवतम में भी जैसे प्रचेतास को भी भगवान शिव जी ने विष्णु की तरफ भेजा.
एंड हेयर वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिवोटीज ऑफ कृष्ण हु वर वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा एंड अदर डेमीगॉड्स बिफोर.
तो यहाँ पे बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले भगवान के शिव की पूजा करते थे.
सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इन्फॉर्म योर फ्रेंड अबाउट भगवद गीता एंड गिव हिम रियल नॉलेज.
तो मेरा ये आवेदन है आपसे कि आप जाइए और उनको बताइए कि भगवद गीता का ज्ञान क्या है, भागवतम का ज्ञान क्या है, असली ज्ञान उनको दीजिए.
एंड देन ही वुड एक्चुअली, when he worships Krishna, he would actually please Lord Shiva more.
और जब वह भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तभी वह भगवान शिव को अच्छी तरीके से और भी संतुष्ट कर सकते हैं.
Okay. Any other questions or comments?
और कोई प्रश्न किसी का, कोई टिप्पणी?
Okay, I think we have gone really over time, 9:15 now. So thank you very much. Granthraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Jai.